अब यहाँ पर आदरणीय पंडित देवेंद्र कुमार जी के माध्यम से हमें नियम सार गाथा 49 का के माध्यम से स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ हो रहा है। सभी से निवेदन गाथा 49 निकाल लें। जो भी मंगलाती खाते से जुड़े हुए हैं वो विषय सामने रखें जिससे उन्हें स्पष्टीकरण अच्छी तरह से हो सके।
नमो हरिहंताय नमो मंगलम भगवान्ीर मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार सर्वमंगलमांगल्यं सर्व कल्याणकारिकं प्रदानं सर्व धर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरं अनंत वर्णादं संस्वभावं ओचानयम सारं केवलीषु केवली
नियम सार परमाणु की 50 नंबर की गाथा और गाथा का विषय था यह निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय की उपादेयता का प्रकाशन है और इस पर कल हमारी काफी चर्चा हुई। उस लोगों की आदत होती है उनको पर्याय के जब निषेध आता है ना निषेध आता है तो एकदम पछता नहीं क्योंकि वो घोड़ करके बात है ना अभाव करके तो नहीं है ना। एक बार कह दी ना घोड़ करके बात है अब तुम बार बार घोड़ करके है ना अभाव तो नहीं है ना घोड़ करके है ना अभाव तो नहीं है ना तो मैंने कहा तुम्हारे घोड़ का हुई नहीं आया समझ कि तुमको तो वही चीज याद आ रही है जो गौण माने क्या था गौण माने क्या होता है कि गौण माने जिसकी याद नहीं आवे उसका नाम गौण। अब बार बार हम कहते हैं तो गौण है अभाव नहीं है गौण है अभाव नहीं है गौण है अभाव नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पर्याय का पक्ष पड़ा है और वो पर्याय का पक्ष बार बार हमको ये कहता है देखो भाई पर्याय का अभाव नहीं है पर्याय को गौण किया। अगर गौण की गौण रूप से भी याद आती हो जिसको गौण किया उसकी गौण रूप से भी याद आती हो तो वो मुख्य है आपके ज्ञान में वो गौण नहीं है। तो एक तो ये समझो जिन्वागम में जैसे यहां पे कहा जब निश्चय नय का विषय चलेगा तो निश्चय नय का विषय चला एक शुद्ध स्वभाव का विषय चला शुद्ध स्वभाव का विषय चला तो उन्होंने छाइक भाव तक का विद्यमान पना स्वभाव में नहीं है। 41 नंबर की गाथा में चारों भाव जीव स्वभाव में नहीं है और उन्होंने क्या वहां पे चिंतित किया कि इन चार इन स्वभाव इन भावों का वर्णन करके हम पंचम भाव का वर्णन करेंगे। क्या वर्णन किया जाए चार स्वभावों का वर्णन करके चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा क्या शब्द का प्रयोग किया है चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव का यह कथन है ये वहां पे 41 नंबर की रखा गई है। ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए कि चार विभाव स्वभावों का जब हम तुमको कथन बताएंगे अपने आप उसमें ये बात सिद्ध हो जाएगी ये चार विभाव स्वभाव भगवान आत्मा में नहीं क्यों क्योंकि चारों सापेक्ष हैं। उत्पाद बनती है और भगवान आत्मा निरपेक्ष और ध्रुव है तो इन चार विभाव स्वभावों का कथन द्वारा पंचम भाव का हम कथन करेंगे। ये कह के क्या कहना चाहते हैं हम उसमें ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि पंचम भाव में ये नहीं है। एक तो ये से और दूसरी श्रेणी जैसी अभी यहाँ आई इसी गाथा में दोनों श्रेणी ले ली तो पहले हमने ही कहा था कि विद्यमान नहीं अब आचार्य कह रहे और कह रहे कि व्यवहार नहीं का कथन विद्यमान व्यवहार नहीं का कथन मानेगा यदि द्रव्य पर्याय दोनों के स्वरूप का ज्ञान कराना हो तो ये पर्याय इस द्रव्य की है कोई मायक में उदय भाव नहीं होता ये भी ज्ञान ये भी जिनवाणी ने प्रतिपादित किया बाबू जी बोलते थे बहुत अच्छी बात है कि राग को एक तरफ तो फुटगल का परिणाम कहते हैं और एक तरफ कहते हैं कि राग जीव नहीं होता है जीव का ही है जीव ही उससे उत्पन्न करता है ये समझे क्या हम कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो कभी राग को आत्मा का बोलते हो कभी राग को फुटगल का बोलते हो क्या करें कौन सी बात को सत्य माने गुरुदेव से प्रश्न करते बने मती कौन सी बात दोनों में से सत्य है गुरुदेव सिंह फरमाते थे दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सही क्योंकि जहां देखो ध्यान से सुनना, जहाँ पर्याय द्रव्य स्वभाव में विद्यमान पर्याय विद्यमान है, व्यवहार नहीं के कथन से वे विद्यमान है, जहाँ व्यवहार नहीं के कथन से विद्यमान कहा, उसमें भी आचार्य देव ने बहुत कमाल किया, व्यवहार नहीं के कथन से विद्यमान है। इसका मतलब क्या, व्यवहार नहीं के कथन से विद्यमान है ये कहकर के भी उन्होंने हमारी मेहनत बताई। क्या मतलब, तो हम जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की मर्यादा के बाहर जाते थे और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की मर्यादा से बाहर अपनी खोज करते थे, वहां से उन्होंने हटाया, तो तेरी मर्यादा तेरे द्रव्य गुण और पर्याय के बाहर तेरी मर्यादा है, व्यवहार नहीं के कथन से विद्यमान है इसे मन प्रमाण वस्तु की मर्यादा में लाए, और वस्तु की मर्यादा में लाने पर भी जो जिसको पूरी वस्तु कहा वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा उपाधेय ऐसा नहीं है। समझा कि नहीं, ये अपन लोग जाते हैं ना, अपन लोग समझ लो अपन लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तरह की सब्जियां होती है जेनियों के खाने लायक और जेनियों के नहीं खाने लायक, है ना। अब ये बाजार क्या है, इस साइड में क्या है, साहब जेनियों के खाने लायक नहीं है, तो खाने लायक नहीं का मतलब क्या, तो उधर तो सब। अब इधर जेनियों के खाने लायक है, तो जेनियों के खाने लायक सारी उठा के जाते हैं, सारी उठा के लिए आते हैं जो खाने लायक देनी होंगे, अपने को जो चाहिए वो लिया, अपना प्रयोजन हमें क्या चाहिए। ऐसे ही वहां पे कहा कि पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्याय की हो तो कोई मत, क्योंकि उसमें तो तुम्हारी नास्ती हो और नास्ती हो भी सर्वथा नास्ती हो। अब उनसे जब निषेध करना होगा, पर द्रव्य गुण पर्याय का निषेध करना होगा, तो पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा का ज्ञान कराया जाए, अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा का ज्ञान करा के एक एक वस्तु स्थापित की, कि वस्तु कैसी ऐसी वस्तु है द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो जब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की स्थापना कर दी, ये वस्तु है, तो ये वस्तु है, इसमें क्या हुआ, इसमें जगत के अन्य पदार्थों से हम भिन्न हो गए और वस्तु की सिद्धि हो गई, मेरी पर्याय बाहर से नहीं आती और मेरी पर्याय बाहर नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य जगत से तो मेरा सर्वथा संबंध है ही नहीं, ठीक है। अब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु स्थापित हो गई, तो सारा जगत बाहर हो गया और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। ऐसा होने पर भी क्या द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, तो श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता, ध्यान से बहुत मारनी जरूर है, श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता, लेकिन क्या है, तो उस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, वहां आपको श्रद्धा का श्रद्धेय उस दृष्टि का विषय जिसे अपन बोलते हैं, तो श्रद्धा का श्रद्धेय यदि तुम्हें खोजना है तो द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के बाहर को जाके खोजना ही मत, और द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आपने वस्तु को स्थापित किया, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा वाली है ये स्थापित किया, तो वो सारी वस्तु श्रद्धा का श्रद्धेय है, ये बात भी नहीं। पुराना जमाना होता था तो पुराने जमाने में स्वयंवर की प्रथा होती थी, अपने पढ़ा है पुराणों में, बहुत पुरानी कहानियां थी, और पुराने जमाने में क्या होता था, राजा का बड़ा वो होता था, राजा कहेगा भैया हमारी राजकुमारी से शादी की योग हो गई, मंत्री जी बताओ लड़का को, अब मंत्री जी कहेंगे इस बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, राजा है समझ में आ गया तो वाह वाह, नहीं समझ में आया तो न जाने क्या करेगा, पता नहीं। वो राजा को मंत्री कह रहे महाराज अपन ऐसा करते स्वयंवर बना लड़की को चुनने दो ना अपना बर। अब राजा का नाम ठीक ये बात ठीक है हो सकता है अपने दिमाग में कोई नहीं और कोई योग्य रहा होगा तो वो स्वयंवर की गई उन्होंने स्वयंवर का सामना एक पूरा मंडप बनाया। सुनना इसमें से दृष्टि का विषय निकालेंगे अभी। अब स्वयंवर में कितने हुए समझ लो 500 राजकुमार। कितने राजकुमार है 500 राजकुमार। अब 500 राजकुमार आने के बाद ये जो स्वयंवर मंडप में आए हैं इनमें से ही एक उसका वर्ण करने वर्ण करने योग्य है। स्वयंवर मंडप के बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनना इसको पूरा उदाहरण को सिद्धांत में लगाना था। स्वयंवर मंडप में जिनकी एंट्री हो गई इस कन्या के योग्य वर इनमें से ही कोई है। इससे क्या बात निकली जो स्वयंवर मंडप के बाहर है जिनकी स्वयंवर मंडप में एंट्री नहीं है उनसे कोई लेना नहीं। अभी क्या होता है तो वो कन्या वरमाला लेके जाती है तो उसके साथ में एक उसकी दासी होती है परिचायिका जिसे बोलते हैं तो उसके हाथ में एक एक का उसके पास एक एक का वार बेटा होता है। आपकी भाषा में बोले तो है ना पुराने जमाने में बोले तो उनका परिचय होता है तो एक एक राजकुमार का वो परिचय देती जाए। ध्यान से सुना एक एक राजकुमार का परिचय दिया राजकुमारी आगे बढ़ गई उसे समझ में आ गया कि ये किसको पसंद है चलो कोई बात। अब उस राजकुमारी ने एक उस दासी ने एक का परिचय दिया एक अगले अगले राजकुमार का परिचय दिया ठीक है। तो परिचय देने के बाद उस राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। अब उसमें मुझे दो बातें कि जिस समय राजकुमारी ने स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया था उस समय वो 500 के 500 राजकुमारों को देख रही थी नहीं देख रही थी। सुनना बहुत गजब का सिद्धांत उसमें से निकलता है। देख रही थी नहीं देख रही थी देख रही थी क्यों देख रही थी कि इनमें से कोई एक वरण करने योग्य है। ध्यान से सुनना अब उसने एक का वरण कर लिया। अब एक का वरण कर लिया तो वो राजकुमारी ये सोचती कि भाई इसके गले में वरमाला डाल दिए पर तो ये तो अपना पक्का हो गया। अब ऐसा करो और भी देख लो कोई जिससे बढ़िया मिल जाए ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो तो जिसके गले में वरमाला डाली है वो उसकी वरमाला पहनेगा और पहनेगा तो पुरुष कहलाने लायक है। सोचने का बात को मतलब उसके गले में वरमाला डाल दी दूसरा कोई विकल्प नहीं फिर उसको 500 है कि 750 कोई मतलब नहीं। अब मेरा प्रश्न दूसरा कि पहले वो 500 को देख रही थी अब वो 500 को देखती है नहीं देखती है नहीं देखती आगे बोल लेती तो अरे देखती नहीं है पहले देखती थी और अब दिखते हैं आगे तो बढ़ेगी नहीं ना आगे नहीं फोड़ेगी ना तो आगे नहीं फोड़ेगी तो दिखेंगे पहले देखती थी और अब दिखते हैं। इसी तरह द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु का परिचय आचार्य भगवंतों ने दिया और दृष्टि ने त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा के गले में अपने अहम की वरमाला डाल दी क्या उसे अब वो पर्यायों को गुणों इन सबको अरे क्या भाई देखेगी नहीं अब ये दिखेंगे ज्ञान में तो रहेंगे लेकिन श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं कर सकते। जैसे वो राजकुमार 500 के 500 राजकुमार उस राजकुमारी को बाद में दिखते तो है लेकिन अपनेपन रूप से कौन दिखता है अपनेपन रूप से एक राजकुमार। इसी तरह ज्ञान में सारी वस्तु द्रव्य भी जानने में आएगा गुण भी जानने में आएंगे पर्याय भी जानने में आएंगे ये सब जानने में आएंगे ये सब जानने में आने पर भी अपनेपन रूप से अपनापन जिसमें हो मैंपना जिसमें हो वो कौन जाने उस रूप में कौन जाने उस रूप में तो एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जाने है ना। तो जिनागम ने जो भी कथन किया है ना चाहे वो पर्याय मैंने उससे भिन्नता की बात चर्चा की हो ये विद्यमान नहीं है ये विद्यमान नहीं है ये कहा तो वो दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को बतलाने के लिए था और व्यवहार में के कथन से ये विद्यमान है, इसका मतलब यहाँ पर दो दो बातें हैं कि ये व्यवहार में के कथन से ये विद्यमान है ये कहकर के वस्तु की सिद्धि की, और ये विद्यमान नहीं है ऐसा जो पहले कहा था तो वो प्रयोजन की सिद्धि का कथन था। हालांकि पहले भी वस्तु की सिद्धि आचार्य कर चुके है ना, लेकिन दो दो बातें हैं कि वस्तु की सिद्धि के बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, और वस्तु सिद्धि में ही इतना उलझ गए कि जब प्रयोजन सिद्धि की बात आवे और उस समय फिर द्रव्य गुण पर्याय पर्याय हेतु से पर्याय की चली पड़ी गई है, आखिर पर्याय भी वस्तु का अंत है, नहीं चलेगा। एक बिंदु और सुन लो इसमें कि देखो प्रमाण के विषयभूत, जो प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है जिसे यहां कहा कि व्यवहार नहीं के कथन से वो विद्यमान है, प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो उसमें भी दो अंश हो गए। दो अंश कौन कौन से हो गए? एक ध्रुव अंश और एक बदलता अंश। पर्याय अंश दोनों अंश हुए ना, ध्रुव और अंश और पर्याय अंश, मतलब बदलता अंश और नहीं बदलता अंश। उस लोगों को एक शिकायत रहती है कि भाई साहब सम्यक दर्शन का विषय यदि आपने अकेला ध्रुव तत्व माना तो पर्याय भी तो वस्तु का अंश है। पर्याय क्या है? वो भी तो वस्तु का अवयव है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो भी वस्तु का अवयव है, और यदि आपने अकेले ध्रुव अंश को दृष्टि का विषय माना, सम्यक दर्शन का विषय अकेले ध्रुव को माना, आपने अंश की श्रद्धा की अंशी की नहीं। प्रश्न समझ आ रहे हैं यार? किसकी श्रद्धा की? आपने अंश की श्रद्धा की, पूरी वस्तु की श्रद्धा नहीं हुई। उसका बहुत सुंदर समाधान है कि देखो भाई, जब आप प्रमाण की ओर से देखते हो, प्रमाण की विषयभूत वस्तु की ओर से देखते हो, तो ध्रुव तत्व तो आपको अंश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वो अंश है, फिर प्रमाण के विषय में अकेला ध्रुव तत्व तो नहीं आता, ध्रुव तत्व तो और वर्तमान परिणाम दोनों मिलकर के प्रमाण का विषय होता है। तो जब प्रमाण की अपेक्षा से आप देखोगे तो ध्रुव तत्व अंश दिखाई देगा, और जब उसी ध्रुव तत्व को श्रद्धा की ओर से देखोगे तो क्योंकि उस ध्रुव तत्व में अपनापन करने से, उस ध्रुव तत्व में अपनापन करने से, उसमें एकत्व करने से, उसमें ममत्व करने से श्रद्धा का मिथ्यापना मिट करके सम्यकपना हो जाता है। श्रद्धा का मिथ्या बना मिट करके सम्यक बना हो जाता है, तो श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व अंश नहीं है, श्रद्धा के लिए ध्रुव तत्व सर्वस्व, वो अंशी है उसके लिए। प्रमाण की ओर से देखोगे तो अंश दिखेगा, और ध्रुव तत्व श्रद्धा की ओर से देखोगे वो अंश नहीं अंशी है। बराबर, ये पॉइंट आया ध्रुवने, और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि प्रमाण वस्तु को सिद्ध भले ही करे, वस्तु की सिद्धि करता है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि कभी भी प्रमाण से नहीं होती। समझना थोड़ा गंभीर है विषय। वस्तु की सिद्धि भले ही प्रमाण करे, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि कभी भी प्रमाण से नहीं होती, इसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है और निश्चय नए पूज्यतम है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में कई बार प्रयोजन की हमको तो वस्तु की सिद्धि तक हम अनंत बार पहुंचे, प्रयोजन की सिद्धि तक नहीं आए। अरे प्रमाण से प्रयोजन की सिद्धि होती है? नहीं होती है। और इसीलिए श्रीमद जी ने यह वाक्य कहा, देखो दृष्टि का विषय कभी भी अनेकांत नहीं होता और ज्ञान कभी भी एकांत रूप नहीं होता। समझना बिंदु यही है। क्या कहा? दृष्टि का विषय कभी भी अनेकांत नहीं होता, और ज्ञान का विषय कभी भी एकांत नहीं है। यहाँ भी अनेकांत भी समय का अनेकांत और एकांत भी समय के एकांत की बात है। और इसलिए श्रीमद जी को लिखना पड़ा अनेकांत भी सम्यक एकांत, ऐसे निज पद की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से उपकारी नहीं है। क्या क्या हुआ इसका? इस पर गुरुदेव श्री का करीब एक घंटे का प्रवचन, इसी एक बोल एक तीन लाइन। अनेकांत भी सम्यक एकांत मतलब अनेकांत स्वरूप वस्तु का ज्ञान किया, जैसा भी अपने बताया द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान किया, उस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान करके अपने प्रयोजनभूत सम्यक एकांत का विषयभूत अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं अशुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत त्रिकालिक तत्व पर हमारी दृष्टि नहीं जावे, अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से उपकारी। यानी उस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान करके निज तत्व जो श्रद्धा का श्रद्धेय तत्व है वो निकाले तो वो अनेकांत की सफलता है। मैंने अनेकांत में से एक सम्यक एकांत को निकाले ये उस अनेकांत का प्रयोजन है। ये श्रीमद राजचंद्र जी ने आगे ये बिंदु आया समझ, जितना समझ आया समझना। अगला अगला बिंदु क्या है कि देखो अभी मैं जो जिस बिंदु पर आप अपनी आप अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं एक प्रमाण के विषय में भी ध्रुव तत्व आता है। आता है द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु आती है ना, प्रमाण के विषय में तो संपूर्ण वस्तु आई, ध्रुव तत्व आया कि नहीं आया? और शुद्ध नय के विषयभूत वो भी ध्रुव तत्व है, जो शुद्ध नय का विषय है जिसे समय सार की ग्यारहवीं गाथा ने कहा भूदत्त मस्तिदो खलु सम्मा दिखि हवद जीवो, भूतार्थ स्वभाव का आश्रय लेता है वह जीव समय दृष्टि होता है, व्यवहार नए अभूतार्थ है शुद्ध नए भूतार्थ है, बराबर है ना। और गुरुदेव इस गाथा को जैन दर्शन का प्रण कहते और इस बात से कहते कि भूदत्त मस्तिदो खलु सम्मा दिखि हवद जीवो, जो भूतार्थ स्वभाव का आश्रय लेता है वो समय दृष्टि है। अब ध्यान से सुनना कि एक दो जगह ध्रुव तत्व अपने को मिला, कैसे? जब प्रमाण के विषयभूत द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का परिज्ञान करते हैं तो उसमें भी ध्रुव तत्व है और शुद्ध नय का विषयभूत जो पदार्थ है वो भी ध्रुव तत्व है। श्रद्धा का श्रद्धे कौन सा ध्रुव तत्व है और क्यों, ये विचार करना पड़ेगा। इसमें बहुत गोता खाते हैं। विचार करना इसका बहुत गंभीर। ध्रुव तत्व में कोई अंतर नहीं है, प्रमाण का विषयभूत जो ध्रुव तत्व है और द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो ध्रुव तत्व है, ध्रुव तत्व तो वही है ना। कहीं श्रद्धा का श्रद्धे कौन सा ध्रुव तत्व है, कि प्रमाण का विषयभूत ध्रुव तत्व जो प्रमाण के विषय में जो ध्रुव तत्व आया वो श्रद्धा का श्रद्धेय है। सुनना गंभीर है, क्यों नहीं? क्योंकि वो निरपेक्ष ध्रुव है। क्या कहा? ध्रुव तत्व वही है, फिर कह रहा हूं ध्रुव तत्व वही है जो उसमें से शुद्ध नय का विषय निकालेंगे अपन, तो वो ध्रुव तत्व, ध्रुव तत्व कोई दो अलग अलग ध्रुव तत्व नहीं है। लेकिन एक ध्रुव तत्व के साथ मैंने जो प्रमाण का विषय जो ध्रुव तत्व बन रहा है, प्रमाण जो जो प्रमाण में जो ध्रुव तत्व है, प्रमाण के विषय में जो ध्रुव तत्व है वो सापेक्ष ध्रुव है। आ गया? उसमें उत्पाद ले भी शामिल है, प्रमाण के विषय में तो दोनों शामिल है कि नहीं, द्रव्य पर्याय दोनों शामिल है कि नहीं, तो वो सापेक्ष ध्रुव है। और जो शुद्ध नय का विषयभूत ध्रुव तत्व है तो वो निरपेक्ष ध्रुव है। क्यों? तो शुद्ध नय के विषयभूत उस ध्रुव तत्व में कोई पर्याय नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त की दशाओं के भेद नहीं है, आया, तो जो तत्व मौका हुई होने पर भी प्रमाण के विषय में जब वो प्रमाण के विषय भूत ध्रुव की बात हम करते हैं तो वो उत्पाद वे निरपेक्ष नहीं है, कैसा है वो उत्पाद वे सापेक्ष, उत्पाद में सापेक्ष ध्रुव तत्व दृष्टि का विषय नहीं होता और शुद्ध नहीं का विषय भूत जो ध्रुव तत्व है वो उत्पाद में निरपेक्ष ध्रुव तत्व है और वो उत्पाद में निरपेक्ष ध्रुव तत्व दृष्टि का विषय थोड़ा गंभीर है, इसे थोड़ा समझने जैसा है। अब इसमें तो इसमें तो वो लिखा ना प्रमाण यही यही गोता खाते हैं लोग, वस्तु में तो है वस्तु में तो है, अरे वस्तु कहाँ, वस्तु की बात कर रहे हो, अनेकांश प्रमाण की विषय भूत वस्तु श्रद्धा का सद्देह नहीं है, ज्ञान का ये है श्रद्धा का सद्देह नहीं, श्रद्धा का सद्देह तो शुद्ध नहीं का विषय भूत वस्तु जिसको समय एकांत कहा वो श्रद्धा का सद्देह है, वो भी अब और विचार करना वो भी स्वरूप में श्रद्धा का विषय नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपने स्वयं खड़ा किया तो सापेक्ष समय पर आएगा, क्या मतलब कि श्रद्धा का स्वर भले श्रद्धा के विषय को सुनना ध्यान से भैया, श्रद्धा के विषय को निषेधात्मक शैली में समझाया तो जाता है, श्रद्धा के विषय में पर्याय नहीं है, ज्ञान की ओर से श्रद्धा के विषय को समझाया जाता है, नास्ती परक शैली में समझाया जाता है, सच्चाई यह है कि श्रद्धा में नास्ती परक कोई स्वर प्रवर्तित ही नहीं होता, श्रद्धा का विषय इसलिए स्वर नहीं होता, श्रद्धा का विषय नहीं होता, स्वर तो स्वर के सामने परक है, स्वर के सामने परक है, परक है मैं तो मैं बस खत्म, मेरे आगे कोई मैं माने मैं, श्रद्धा का स्वर ये होता है एक मैं इस तरह का उसका स्थान होता है ना, आ गया, तो ये बहुत सारी बातें हैं तो जो पूरे शुद्ध भाव अधिकार में है ना, ये नास्ति परक इतना कथन आया, अस्थि परक थोड़ा बहुत वो भी कथन आया, क्यों नास्ति परक कथन क्यों करना पड़ा आचार्य भगवान को, हमने इन इनमें अपनी अस्थि की कल्पना, अगर हमने इनमें अपनी अस्थि की कल्पना नहीं की होती तो आचार्य को इनका निषेध भी करने की जरूरत होती, आगे इसलिए आचार्य भगवान ने पहले जो विभाव पर्याय विद्यमान नहीं है ऐसा ऐसी प्रतिपादित की गई थी, वे सब विभाव पर्याय वास्तव में व्यवहार नय के कथन से विद्यमान है, मैंने अपने को ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिनागम की जो शैली है, देखो एक और बिंदु लो इसमें कि जिनागम की शैली का एक गजब का बिंदु आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में से अपन निकालो, तो प्रवचन सार है, प्रवचन सार, तो प्रवचन सार की 189 का है, कौन सी गाड़ो 189 गाड़ो वर्ड आगे पढ़ लेंगे, उसमें आचार्य भगवान ने राज परिणाम का ही आत्मा कर्म है, राज परिणाम ही आत्मा का कर्म है, उसी का आत्मा ग्रहण करने वाला है, उसी का आत्मा त्याग करने वाला है, वही पुण्य पाप रूप द्वेष है, ये शब्द का प्रयोग किया, अब फिर उन्होंने क्या लिखा, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है, क्या शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय, कैसे बोल, अपन लोग तो समय साल में पढ़ते राग को पुत्र लगाए और मुझे कभी कभी लगता है सच बोलता हूँ आपको, अगर कुंद कुंद आचार्य का ही वो प्रवचन सार नहीं होता और अमृत चंद्र आचार्य की ही उसकी टीका नहीं होती और गुरुदेव श्री ने ही उस पर प्रवचन नहीं किए होते तो इस कथन को हम ऐसे नकारते जैसे गधे की स्थिति, ऐसा कैसे हो सकता है, शुद्ध द्रव्य का, अरे शुद्ध का मतलब भैया बहुत प्रकार के होते हैं, समझो एक एक तो ये कथन समझना ध्यान से इसी संदर्भ में कह रहा हूँ, और दूसरा नियम साल की 50 नंबर की गाथा में जब अपन आते हैं वहां शायिक भाव को भी पंद्रह कहा और उससे रहित शुद्ध अंतर तत्व उसका नाम स्वद्रव्य जीव तत्व। आज दो अपेक्षाएं आएंगी खाली आपके, कौन कौन सी दो अपेक्षाएं आएंगी अपने को जल्दी नहीं आराम से समझे मुझे कौन सी दो अपेक्षाएं आई कि एक तो शुद्ध राग परिणाम को आत्मा का कर्म कहने वाला, राग परिणाम का कर्ता आत्मा को कहने वाला, और उसके लिए कुंद देव ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय में है आगे? और दूसरा छायिक भाव को पद्रव्य कह रहे और छायिक भाव से भी रहित परम पारनामिक भाव वो शुद्ध अंत तत्व स्वद्रव्य है और वो उपाधि है, बाकी सब पर दोनों आचार्य कुंद के कथन है, दोनों की टीका अमृत चंद्र आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सारी संबंधों की, और लेकिन गुरुदेव ने तो दोनों के समान रूप से प्रवचन किए ना, उन गाथाओं के अगर आप गुरुदेव के प्रवचन पढ़ोगे 189 गाथा के अगर गुरुदेव के प्रवचन पढ़ोगे ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने दो चार पन्नों में वो बात लेके निपटा दिया, उस पर भी काफी विस्तार से गुरुदेव ने प्रवचन किए, क्यों? क्योंकि गुरुदेव को पता था कि ये बात मुमुक्षुओं को भी झेलने वाली थी। अब वहां शुद्ध द्रव्य और यहाँ ये शुद्ध द्रव्य क्या अंतर है दोनों शुद्ध द्रव्य क्या अंतर है बोलो, ये शुद्ध द्रव्य वो शुद्ध द्रव्य अंतर क्या है? तो गुरुदेव ने उस प्रवचन में नियम सारे सब प्रवचन ताकि प्रवचन में तीन चार दिन बोला अशुद्ध द्रव्य दृष्टि को विषय रखी, अशुद्ध द्रव्य दृष्टि को विषय रखी, विषय नहीं कहने प्रमाण का भी नहीं है, प्रमाण का विषय भी नहीं, वो वहां पे निश्चय ने का लिया उसको, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय ने है, और वो कह रहे आप शुद्ध द्रव्य दृष्टि में विषय रखी, क्या मतलब? उसको एक उदाहरण मुझे मिला बहुत अच्छा, अब रेलवे स्टेशन में जाते ना, ये तो बहुत टाइम हो गया मुझे रेलवे, तो रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे एक लिखा रहता है पीने योग्य शुद्ध पानी, क्या लिखा रहता है? पीने योग्य शुद्ध पानी। मेरा प्रश्न ये वो रेलवे के रेलवे का पीने योग्य शुद्ध पानी है कि जेल योग्य पीने योग्य शुद्ध पानी है, क्या है? रेलवे के पीने योग्य रेलवे का पीने योग्य शुद्ध पानी है वो, कोई कहेगा देखो लिखा है ना रेलवे ने भारत सरकार ने लिखा है पीने योग्य शुद्ध पानी, वो रेलवे का पीने योग्य शुद्ध पानी है, जेएनयू का पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं है, तो इसका मतलब फिर लिखा क्यों? इसलिए इसमें इतना करना अगर तुझे पानी पीने का विकल्प हो तो और भी नल लगे जिसमें लोग गंदे हाथ धोते हैं, वहां नहीं लिखा है पीने योग्य शुद्ध पानी, अगर तुझे छन्ना लगाना पड़े यहां लगाना, इतना उपकार किया तुम्हारे साथ, छन्ना लगाना पड़े तो यहां लगाना, बाकी के नलों की ओर झांकना भी मत यहाँ लगाना, इसलिए वो पीने योग्य शुद्ध पानी है, पीने योग्य शुद्ध पानी माने तुमको छन्ना लगा करके पानी छान करके अगर पीना हो तो यहाँ से पीना, आया? तो ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है ना, राग को आत्मा का कहने वाला है? तो वो ऐसा ही है जैसे रेलवे का पीने योग्य शुद्ध पानी, क्या मतलब? तो इतना कहकर के आचार्य देव ने अपने को बाहर के पूरे जगत से समेट लिया, आप इस कथन को कमजोर मत समझो, हम आत्मा की खोज करते थे बाहर में, आचार्य देव ने हमें अपने क्योंकि अभी निर्मल परिणाम तो अपने पास है नहीं है ना, निर्मल परिणाम तो है नहीं, तो जो मलिन परिणाम है ना वो मलिन परिणाम जहां है वही तेरा आत्मा है, क्यों? क्योंकि वो मलिन परिणाम को कौन कर रहा है? वही तो कर रहा है। ऐसा कहकर भी आचार्य देव ने पूरे जगत से अपने को उठा लिया, कम उपकार नहीं है ये कथन करके, इसको हल्का कथन मत समझना। लेकिन अपन लोगों की तो आदत है जहां अपने को थोड़ी सी जगह मिल जाए वहां खेल जाए, आचार्य देव ने कहा देखो लिखा नहीं लिखा, लिखा आचार्य ने लिखा अब हम उसी कथन को पकड़ के बैठे और उसी को शुद्ध द्रव्य मान करके अनुभव करने लगे। तो वो शुद्ध द्रव्य था कब? वो तो जगत के पर पदार्थों की मिलावट उसमें नहीं थी, है ना। तो विकारी पर्याय कुछ नहीं, तेरा तेरी मर्यादा यहां तक है इतना बताने के लिए वाकई। और उस व्यवस्था को नहीं समझ करके कोई उसे ही आश्रयभूत श्रद्धा का विषयभूत शुद्ध द्रव्य समझने लगे और उसका आश्रय करने लगे तो कभी भी शुद्धता की प्राप्ति नहीं। क्या मतलब? ये कहकर के तेरे को एक पड़ाव पर उन्होंने स्थापित किया, अब तुझे अपने शुद्धात्मा की रिसर्च करनी है, कहां है मेरा शुद्धात्मा, अगर तुझे ये जांचना है खोजना है तो इस मर्यादा के बाहर में। क्या मतलब? कि देखो ये राग द्वेष की मलिनता है ना, राग द्वेष की मलिनता भी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर राग द्वेष नहीं होता तो आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा हो वही राग द्वेष होता है, जहां आत्मा नहीं हो वहां राग द्वेष नहीं होता। मैंने होगा तो वही होगा जहां आत्मा होगा, राजदेश हो गई। आत्मा नहीं हो और राजदेश हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये तो हो सकता है आत्मा हो और राजदेश न हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि राजदेश हो और आत्मा हो ना। उसमें भी तुम्हारे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया, ये राजदेश हो रहे ना। अरे ये राजदेश में तो कहने वाला पकड़ उसे, कोई तो आत्मा है। सर एक बहुत अच्छी बात कही, किसी के घर में रोटी चली गई, जली हुई रोटी की बदबू आई, रोटी जल जाती है तो तवे पे उसकी अलग प्रकार की होती है खुशबू सुगंध, जो भी आप बोलते हो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, खुशबू बदबू जो भी बोलो। तो वो जो जली हुई रोटी, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जली हुई रोटी इस बात की सूचना करती है जिसके घर में आटा है। क्यों? क्योंकि आटा नहीं होता तो रोटी जलती कैसे? अरे विकार किया, ये विकार हुआ ना, तो ये विकार भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आत्मा है। आत्मा नहीं होता तो विकार कैसे हो? तो तू विकार को मत पकड़ जिसके अस्तित्व में ये विकार हुआ, जहां आत्मा का अस्तित्व है और वहां ये विकार हुआ, उस विकार को ग्रहण करके उस आत्मा को पकड़, आत्मा को पकड़ेगा तो शुद्ध आत्मा तेरे को क्या करना है। ये आचार्य के प्रयोजन है कथन करने के। क्यों आचार्य कहना चाहते हैं, किस किस अपेक्षा कहां से अपने को आचार्य भगवान उठाना चाहते हैं, कहां तक आचार्य भगवान अपने को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी दोनों प्रकार के कथन आगे हम लोग उलझन में पड़ गए, ये बताओ हमको पर्याय माने के नहीं माने तो ये बताओ। वो सो लोग बोले हाँ यार हमें उत्तर दीजिए जी, द्रव्य में पर्याय है कि नहीं, हाँ यार हमें उत्तर दीजिए। मैंने कहा तुम पिता हो, तुम पिता ही हो या तुम बेटा ही, तुम बेटा हो बेटा ही हो, हाँ मैंने उत्तर दी। दे सकते हो क्या? हाँ तो पिताजी की अपेक्षा से बेटा हो, लेकिन बेटे की अपेक्षा से पिता है। आप कहोगे नहीं, आप तो दीजिए उत्तर, मैं पिताजी हूँ, हाँ मैंने उत्तर दीजिए। नहीं दे सकते, जिनागम की कथन है, उनकी अपेक्षाएं हैं, जब तक उन अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे। और सच में इसलिए मैं कभी कभी बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ कि गुरुदेव को भी सुनना है, जिनवाणी को पढ़ना है, इसी परमागम को सर्वांगीण पढ़ो, पूरा पढ़ो आद्योपांत। और गुरुदेव को भी सुनना है ना, गुरुदेव के भी आद्योपांत प्रवचन सुनो। क्यों? क्योंकि नहीं तो सारी व्यवस्थाएं हमारे ख्याल में क्या 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 व्यवस्थाओं से क्या क्या बोल दिए, और सारी व्यवस्थाएं गुरुदेव ने अपने प्रवचन में खोली है। इसलिए और इसकी चर्चा आएगी विस्तार से, काफी गंभीर विषय है, समझने जैसा विषय है, और इसकी चर्चा विस्तार से।
आत्मस्वरूप सहजानंद।